मेरे स्नेही मित्रों नमस्कार। आज 8 जनवरी 2021 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबके सामने कुरियन साहब के जिंदगी की एक झलक पेश की थी और खासकर उस झलक का संबंध इस तथ्य से था कि किस प्रकार कुरियन साहब क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ और करने के लिए दे दिया गया। लेकिन जब उन्हें दे दिया गया तो उसे पूरे हृदय और मन के साथ उन्होंने स्वीकार किया और उस क्षेत्र में काम करके हिंदुस्तान के सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मानदंड स्थापित कर दिया। फ्रेंड्स, दरअसल इस तरह के व्यक्तियों में कुरियन साहब अकेले नहीं है, बहुत से ऐसे नाम हैं और दुनिया में प्रसिद्ध नाम हैं जो सच में जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, जो मिला उन्होंने वह किया। और आज जब हम उनके नाम ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वो कोई सामान्य करना नहीं था, उसमें उन्होंने असाधारण ऊंचाइयों तक की सफलता हासिल की। लेकिन देखिए होता क्या है, मुझे लगता है कि ये जो होता है इसे भी हमें समझना चाहिए और खासकर यदि मैं किसी बात से प्रभावित होता हूं तो मुझे उसकी फिर चौतरफा जांच परख कर लेनी चाहिए। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए कि मैं कोई बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, कोई विचार देना चाह रहा हूं, कोई सिद्धांत स्थापित करना चाह रहा हूं, तो मैं उसके लिए जो भी उदाहरण लूंगा छांट छांट कर ऐसे ही उदाहरण लूंगा जो मेरी बात को प्रमाणित करें, मेरी बात के फेवर में हों। जबकि सच्चाई यह है कि मैंने जो छांटे हैं वो अपनी बात के फेवर में छांटे हैं और जो छोड़ दिए हैं उनकी संख्या इस छांटे गए से कई गुना ज्यादा है, लेकिन मैं उन पर बात नहीं करूंगा। इसलिए फिलहाल इस बात पर बात बहुत ज्यादा की जाती है कि अपने मन का काम करो, अपने मन का काम करो, अपने मन का काम करो। मीडिया भी यही कहते हैं, लाइफ मैनेजमेंट वाले भी यही कहते हैं, सेल्फ हेल्प वाली किताबें भी यही कहती हैं, सभी यही कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में किसी भी एक सामाजिक संरचना में इसे ज्यों का त्यों लागू किया जा सकता है? भारत के संदर्भ में आप सोच करके देखिए, क्या सच में हमारे सामने इतने सारे विकल्प होते हैं कि वहां हम अपने मन की इच्छा को थोप सकें? जहां विकल्प ही न हो वहां अपने मन से कर पाना कैसे संभव है? भारत की सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। जिस देश की जैसी संरचना होगी उसके हिसाब से ही हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो दोस्तों, यहां हम गड़बड़ी करते हैं और सच बात यह है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं भले ही वह हमारे मन का नहीं है लेकिन वह हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा है। उसको करने में मैं जो समय लगा रहा हूं, मेरा जो समय लग रहा है, चाहे मैं मन से लगाऊं या अनमने भाव से लगाऊं, लेकिन समय जो खप रहा है वो मेरे जीवन का समय खप रहा है और एक एक मिनट करके मेरा जीवन छोटा होता चला जा रहा है। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो फिर कहा जाता है कि भैया खूब एंजॉय करो यार, फिर कहां कौन कुछ मिलता है नहीं मिलता है, एंजॉय करो। लेकिन उसके साथ ये भी ऐड होना चाहिए कि काम करो, जो कुछ भी मिल गया है केवल जिंदगी ही दोबारा नहीं मिलने की बात है बल्कि हो सकता है कि ये जो काम आपको मिला हुआ है यह भी दोबारा ना मिले। और अभी जो मिला हुआ है चाहे भले ही आप मजबूरी में ही कर रहे हैं वहां सीखने के लिए बहुत कुछ है और सच पूछे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते उस समय खासकर क्योंकि हमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि ये जो काम मुझे मिला है यह आगे चल करके मैं चाहे कुछ भी करूंगा या हो सकता है कि अपने मन का ही करने लगूं तो कितना काम आएगा। यानी कि एक प्रकार से कोई एक ऐसा संस्थान है, मान लीजिए कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, बेमन से नौकरी कर रहा हूं, मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए मुझे करनी पड़ रही है, ठीक है चलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से इस घटना को देखना चाहिए कि यार अभी तक मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए खुद अपनी तरफ से कुछ पे किया है, कुछ धन दिया है। तब मुझे स्कूल में सिखाया गया, कॉलेज में सिखाया गया, या मैं कहीं ट्रेनिंग सेंटर में चला जाऊं तो वो उनकी मुझे फीस देनी पड़ेगी। मैं कंप्यूटर भी सीखूंगा तो मुझे उसके लिए फीस चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, मतलब मैं काम कर रहा हूं, काम के बदले में मुझे सैलरी मिल रही है, तो यहां उल्टा नहीं हो रहा है कि मैं सीख रहा हूं और बदले में सैलरी भी ले रहा हूं, बशर्ते कि सीखने की भावना मेरे दिमाग में हो, जो कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में नहीं होती। हमें ऐसा लगने लगता है कि अभी जो मिल गया है बस जिंदगी खत्म हो गई, अब जिंदगी का पूर्ण विराम भी इसी से ही होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैं आपके सामने बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूं जिन्होंने काम की शुरुआत की, समय आया, उसमें बदलाव हुआ और आज वो इतिहास के स्वर्णाक्षर बन चुके हैं। ऐसे नाम आपको जानने चाहिए, ऐसे लोगों की जीवनियां आपको पढ़नी चाहिए, ताकि हम सब अपने आप को व्यापक बना सके, अपने को लचीला बना सके। आप जरा सा पढ़ करके देखिए आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन ने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की थी? पढ़ने में तो फिसड्डी ही थे, एक मौसम विभाग में सामान्य किस्म के, वहां क्लर्क कहा जाता है जो सुपरवाइजर वगैरह टाइप के होते हैं, बस इस तरह के व्यक्ति बना दिए गए थे। कल्पना कर सकते हैं आप कि किसी ऑफिस का एक क्लर्क किस्म का व्यक्ति और बाद में इतना महान वैज्ञानिक बन जाए आइंस्टीन। लेकिन हाँ, बकायदे उनकी जीवनी पढ़िए तो और बारीकी से पढ़िए तो पता लगता है कि वो जब अपने ऑफिस का काम भी करते, ऑफिस का काम ठीक ठाक करते थे, यानी कि वहां उन्हें डांट डपट पड़ती थी, लेकिन जो समय उनका बच जाता था उसका अपने ढंग से इस्तेमाल करते थे। घर में वो अपने ढंग से सोच विचार करते थे, चिंतन मनन करते थे, और जब उन्हें लगा कि नहीं यहां ठीक ठाक है तो उन्होंने छोड़ छाड़ दिया। और बाद में अमेरिका ने उन्हें आमंत्रित किया, और जो प्रिंसटन कॉलेज यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, प्रिंसटन कॉलेज, वहां वो गए और वहां अपने मन से उन्होंने सब कुछ किया, वहां करने को उनको अपने मन से सब कुछ मिल गया। आप दूसरों को देखिए, आप हेनरी फोर्ड को देखिए। हेनरी फोर्ड तो केवल एक घड़ी सुधारने वाले छोटे से कारीगर जैसे थे, एक आदमी के यहां जो घड़ी बेचने का काम करता था, तो उसने घड़ी सुधारने का भी छोटा सा काउंटर खोल लिया था। भारत में भी आपको ऐसे दुकान मिल जाएंगे, वहां घड़ी सुधारा करते थे। घड़ी सुधारते सुधारते आप देखिए कि वो क्या बन गए, हेनरी फोर्ड बन गए, कार बनाने वाले बन गए। गांधी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या गांधी जी क्रांतिकारी पैदा हुए थे? क्या वो एक्टिविस्ट थे? वो तो बैरिस्टर थे, इंग्लैंड वकालत पढ़ने गए थे और वकालत पढ़ करके आ गए थे और वकालत की शुरुआत कर दी थी। और दक्षिण अफ्रीका भी कोई वो आंदोलन करने नहीं गए थे, वो बकायदे वकालत करने गए थे। एक अब्दुल्ला सेठ थे, उनके केसेस जहां दक्षिण अफ्रीका से वो व्यापार कर देते थे कि मैं ठीक है वहां केसेस निपटाया करूंगा। अब्दुल्ला सेठ ने कहा कि इनकी यहां तो वकालत चल नहीं रही है, उनके पिता से उनकी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो इनको वहां भेज दीजिए, उनके पिता से कहा, और पिताजी ने गांधी जी को भेज दिया, गांधी जी चले गए। बदलाव आया, उन्होंने शुरुआत इस बात से तो नहीं की थी कि मुझे आंदोलन ही करना है। तो दोस्तों ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे नाम हैं। आप एडिसन के जीवन को देखिए, जिसने इतने सारे आविष्कार किए हैं, जिन्हें थोक आविष्कारक कहा जाता है। सब्जी बेचने से, अखबार छापने से, सब्जी की टोकरी सिर पर रख करके और घर घर जा करके बेचने का काम करते थे, ट्रेन में अखबार बेचते थे, क्या क्या काम उन्होंने नहीं किया। फिर टेलीग्राम के दफ्तर में नौकरी कर ली, तब जा करके आखिरी में वो थॉमस अल्वा एडिसन बने। एक के साथ ऐसा नहीं, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें इनके बारे में भी जानना चाहिए और वहां से भी फिर अपने जीवन के लिए प्रेरणाएं लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और मुझे लगता है कि ये विषय अपना पूरा भी हो गया है, और हो सकता है कि इस विषय की चर्चा के दौरान कुछ नए तथ्य आप सबके दिमाग में पहुंचाने में मुझे सफलता मिली हो, और अगर ऐसा मैं कर सका हूं तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सब मुझे अनुमति दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।